हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शाम के वक्त वेद काफी एक्साइटेड होकर घर पहुंचा था। आज वो आराध्या के साथ एक हैंडलूम वर्कशॉप में गया था, जहां उसे एक साड़ी अच्छी लगी थी और वो उसे शिवांशा के लिए लेकर आया था। वहीं शिवांशा भी बेसब्री से वेद के आने का इंतजार कर रही थी। आज वो रानी के साथ किचन में गई थी और उसने उन सबके लिए डिनर बनाया था। जैसे ही वेद ने अपने कमरे में कदम रखा और शिवांशा को देखा, तो एक पल के लिए वो थोड़ा चौंक गया था। हालांकि शिवांशा के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर आंखों में थोड़ी मायूसी भी थी। शिवांशा हमेशा से काफी अलग लग रही थी। रानी ने उसे तैयार होने में हेल्प की थी ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके, और उसे ऐसा करने के लिए आराध्या नहीं कहा था। वेद के सामने इस वक्त शिवांशा स्काई ब्लू और व्हाइट कलर का सूट पहने खड़ी थी। हमेशा की तरह उसके बाल चोटी में बंधे होने के बजाय खुले थे। चेहरे पर हल्का मेकअप भी किया हुआ था। हाँ, दूसरों के लिए वो परफेक्ट और अच्छे से तैयार हुई लग सकती थी, पर वेद को वो उसी तरह अच्छी लगती थी जैसे वो हमेशा तैयार होती थी। वेद उसे काफी गौर से देख रहा था। शिवांशा वेद के पास आई और धीरे से पूछा, कैसी लग रही हूं मैं? वेद ने अपने हाथ में पकड़ा पैकेट अपने पीछे कर लिया था। उसने दूसरे हाथ से शिवांशा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो ना? कंफर्टेबल तो मैं साड़ी में भी फील करती हूं, लेकिन हाँ, अब कुछ भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है, वरना साड़ी में तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी और मेरे पैर उसमें उलझने लगते थे, शिवांशा ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर आज एक्साइटमेंट थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसका आज का दिन अच्छा बीता था। तो मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया? वेद ने पूछा। आज रानी ने मुझे पूरा घर घुमाया था, बहुत बड़ा है। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सबके बारे में बताया, मुझे तैयार करने में हेल्प की, और फिर हम दोनों ने साथ में डिनर बनाया। शिवांशा ने कम शब्दों में अपने आज के दिन का पूरा ब्यौरा दे दिया था। ओह, तो कोई आज पूरे दिन इतना बिजी था कि उसे एक मैसेज करने का भी टाइम नहीं मिला? वेद ने सिर हिलाकर कहा। जब वो ऑफिस में था, तब बार बार इस उम्मीद के साथ मोबाइल चेक कर रहा था कि अब शिवांशा के पास फोन है तो वो उसे जरूर मैसेज या कॉल करेगी। इसी के साथ शिवांशा को याद आया कि कल वेद ने उसे मोबाइल दिया था, वो तो उसे चेक करना तक भूल गई थी। शिवांशा ने भौंहें उठाकर कहा, सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, आप मेरे मैसेज का वेट कर रहे थे। तुम्हें लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपने काम के बीच बार बार मोबाइल चेक करते हुए किसी के मैसेज देखूं? वेद ने तंज भरे लहजे में कहा। शिवांशा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, वेद ने कहा, तुम नीचे चलो, मैं चेंज करके आ रहा हूं, देखते हैं कि तुम्हें कितनी अच्छी कुकिंग करनी आती है। ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूं, शिवांशा ने जवाब दिया। वो आज रानी के साथ खाना बना तो रही थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वेद के कहने पर शिवांशा नीचे आ गई थी और रानी के साथ खाना टेबल पर लगाने में हेल्प कर रही थी। वहीं उसके जाने के बाद वेद ने वो साड़ी का पैकेट अपनी अलमारी में रख दिया था। जब उसने वो साड़ी ली थी तो यही सोचा था कि आने के बाद शिवांशा को सबसे पहले चेंज करके वही पहनने को कहेगा। शिवांशा के कंफर्ट और खुशी के आगे वेद ने कुछ नहीं कहा। उसे अलमारी में रखने के बाद वेद ने चेंज किया और फिर नीचे पहुंचा। तब तक सब डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। अक्षत ने शिवांशा की तरफ देखकर कहा, तो आज का खाना शिवांशा भाभी ने बनाया है, लेट्स ट्राई कि आप कितना अच्छा कुक करती हो भाभी। वैसे बता दूं, मेरा ड्रीम भी शेफ बनने का है, फिलहाल हॉबी के तौर पर क्लासेस ले रहा हूं, तो आज आपके खाने को रेट करने के लिए एक इंटर्नी शेफ यहां पर मौजूद है। फिर बोलते हुए उसकी नजर वेद की तरफ गई, जो उसे घूर कर देख रहा था। अक्षत ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ की और शिवांशा से कहा, लेकिन भाई की आंखें देखकर लग रहा है कि अगर मैं आपके बने खाने में किसी तरह की कमी निकालूं तो वो अपनी आंखों से ही मुझे मार डालेंगे। मैं ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूं, पर मुझे मेरी जान भी प्यारी है भाभी। जान प्यारी है तो फिर खाने में कमी मत निकालना, आराध्या ने उसे छेड़ते हुए कहा। जहां अक्षत और आराध्या वेद की तरह शिवांशा के पहली बार खाना बनाने पर एक्साइटेड हो रहे थे, वहीं उनसे अलग वंश के चेहरे पर किसी तरह की उत्सुकता नहीं थी। यहां तक कि वो परेशान भी नजर आ रहा था। पिछली बार शिवांशा की बनाई खीर की वजह से वेद की तबीयत खराब हो गई थी। वो तो वेद के बारे में ठीक से कुछ जानती तक नहीं थी। वंश ने रानी से कहा, जब घर में हाउस हेल्पर्स हैं तो फिर भाभी को काम करने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि कुकिंग स्टाफ हायर कर लेना, इन्हें ठीक से कुछ आता भी नहीं है, कहीं पिछली बार की तरह फिर से। वंश की बात पूरी होने से पहले ही आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इसी के साथ वंश रुक गया। अपने गुस्से और हड़बड़ाहट में वो कुछ भी बोले जा रहा था। वंश की बातों से शिवांशा का चेहरा भी उतर गया था। वेद ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव थे। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन अनजाने में ही सही लेकिन खुशियां खत्म करने वाली होती हैं। वंश ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और फिर गहरी सांस लेकर वेद से कहा, भाई आप। वो बातों ही बातों में वेद को शिवांशा का बनाया हुआ खाना खाने से रोकना चाहता था। इससे पहले कि वंश की बात पूरी होती, वेद ने अपनी प्लेट में सर्व करके खाना शुरू भी कर दिया था। उसने वंश की बात पर ध्यान तक नहीं दिया। एक दो बाइट खाने के बाद वेद ने शिवांशा की तरफ देखकर काफी नरम लहजे में कहा, इम्प्रेसिव, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो? क्या आपको सच में अच्छा लगा? शिवांशा ने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल अच्छा लगा। और तुम वहां पर खड़ी क्यों हो? यहां आओ, बैठो और खुद भी टेस्ट करो, वेद ने जवाब दिया और शिवांशा को अपने पास की सीट पर बैठने का इशारा किया। वेद के बाद अक्षत ने खाने को टेस्ट किया और वो शिवांशा से बोला, भाभी 5 out of 5 star, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, सच में अच्छा खाना बनाया है, पर इसका आपको नुकसान भी होने वाला है। अब हम रोज रोज आपसे नई नई फरमाइशें करेंगे। तो तुम क्या चाहती हो वो पूरे दिन किचन में बिताए? वैसे तुम भी तो कुकिंग क्लासेस ले रहे हो, तुमने कभी घर पर खाना नहीं बनाया? कल तुम ट्राई करना, फिर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा तुम्हें, वेद बोला। कुछ देर पहले वंश की वजह से शिवांशा काफी असहज हो गई थी। वेद और अक्षत उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आज फिर से खाने में कोई गड़बड़ होती या फिर वेद कुछ कहता तो शिवांशा की कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कभी वेद या बाकी घर वालों के लिए कुछ कर सके। शिवांशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी लेकिन आंखों में उदासी भी। वो बिल्कुल शांत थी और सिर्फ हां या ना में सिर हिला रही थी। आराध्या ने इशारे से वंश को खाना खाने के लिए कहा। वंश ने खाना टेस्ट किया और शिवांशा से बोला, भाभी सच में खाना काफी टेस्टी है और आई एम सॉरी अगर मैंने गुस्से या जल्दबाजी में कुछ कह दिया हो। हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है, पर पिछली बार जिस तरह भाई की तबीयत खराब हुई थी उसके बाद हम सबको डर लगता है। मैं समझ सकती हूं, मैंने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा था, शिवांशा ने धीरे से जवाब दिया। वो अपनी बातों से कुछ न जताए लेकिन हाँ, शिवांशा का मूड अपसेट हो चुका था। वो अपनी तरफ से चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन ऐसा लगता था कि उन सबके लिए वेद से बढ़कर कुछ नहीं था।
डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में थे। आराध्या ने कमरे में आते ही वंश की तरफ घूर कर देखा। वंश ने सिर हिलाया और सफाई में बोला, मुझे ऐसे मत देखो, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी है लेकिन कुछ चीजों को वो नहीं समझ सकती। भाई हमारे लिए क्या मायने रखते हैं ये समझने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी उन्हें भाई की लाइफ में आए हुए टाइम ही कितना हुआ है और वो उम्र में भी काफी छोटी हैं, मुझे इतनी समझदार भी नहीं लगती। बस करो वंश, तुम तो ऐसे जता रहे हो जैसे शिवांशा भाभी भैया के दुश्मन हो। अनजाने में किसी इंसान से गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उम्र भर तुम उसे लेकर बैठे रहो। वो उनकी पत्नी हैं और वो भी उनसे बहुत प्यार करती हैं, आराध्या ने सख्त आवाज में कहा। मैंने ये नहीं कहा कि वो उनसे प्यार नहीं करती हैं या उनका बुरा चाहती हैं, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि, वंश आराध्या को समझाने की कोशिश कर रहा था पर उसकी बात पूरी होने से पहले आराध्या उसे काटते हुए बीच में बोली, मुझे तुम्हारे कहने का कोई मतलब नहीं समझना है, मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि तुम सब लोग शिवांशा भाभी को भाई की पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। पहले नव्यांशी का ये हाल था तो अब तुम उसकी जगह शुरू हो गए हो। तुम सबकी वजह से ही इस घर के हाउस हेल्पर तक को उनके खिलाफ बोलने का मौका मिल जाता है। उन्होंने बहुत हिम्मत की होगी आज सब कुछ करने की लेकिन तुम्हारी बातों की वजह से उनका दिल बहुत दुखा होगा। सच कहूं तो उनकी जगह मैं होती तो मुझे भी उतना ही बुरा लगता। मैंने उन्हें उस वक्त सॉरी बोल दिया था। अब तुम क्या चाहती हो? वंश चिढ़ते हुए बोला, मैं बस ये चाहती हूं कि तुम लोग अब भाई को स्पेस देना शुरू कर दो। अब वो सिर्फ तुम्हारे भाई नहीं हैं जो 24/7 बस तुम्हारे लिए ही अवेलेबल रहें, उनकी भी प्राइवेट लाइफ है। और प्लीज ये सोचना बंद करो कि तुम सभी भाई बहनों के अलावा सब वेद भाई को मारना चाहते हैं, आराध्या ने दांत पीसते हुए कहा। यह सब उसके लिए नया नहीं था। जब आराध्या भी घर में नई नई आई थी तब उसे भी इसी तरह उनकी अजीब नजरों का सामना करना पड़ता था। वो वेद ही था जिसने सबको डांट कर ये यकीन दिलाया था कि आराध्या अब उनकी फैमिली का हिस्सा है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। यहां तक कि वंश भी कई बार वेद के मामले में इंपल्सिव होकर उस पर चिल्ला दिया था। किसी और का तो पता नहीं लेकिन देवराज ठाकुर ने उन्हें मारने की कोशिश की थी और मुझे यकीन नहीं है जब उसके जैसा ट्रस्टवर्दी इंसान धोखा दे सकता है तो क्या पता जिन्होंने भाई और मॉम डैड को मारने की कोशिश की थी वो अभी भी भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी और को हमारे घर में भेज दें। वैसे भी उस साजिश में सिर्फ देवराज ही नहीं बाकी लोग भी जुड़े हुए थे, वंश बोला। अब तुम हद कर रहे हो, ये इन सब के बीच में देवराज ठाकुर कहां से आ गया? मैंने सुना था वो मर गया है और उस बात को बहुत सारा टाइम हो गया। तुम लोगों ने मिलकर उसके परिवार के हर एक शख्स को खत्म कर दिया। फिर ऐसा कोई नहीं है जो अपने परिवार का बदला लेने के नाम पर भाई या तुम लोगों को नुकसान पहुंचाए। सबको शक की नज़र से देखना बंद करो, बाकी का छोड़ो, लेकिन कम से कम शिवांशा भाभी पर यकीन करो। आराध्या उसे समझाने लगी। ठीक है, मैं आगे से उनके मामले में ध्यान रखूंगा, लेकिन भाई की सिक्योरिटी को लेकर अभी भी मैं उतना ही अवेयर हूँ, वंश बोला। आराध्या ने उसकी बात पर हामी भरी। वैसे भी उसे वंश से बहस नहीं करनी थी, वरना एक बार बहस या लड़ाई होने के बाद वो कई दिनों तक उससे बात नहीं करता था। दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में बैठकर काम कर रहा था। पहले नव्यांशी के रुकने पर वो परेशान हो रहा था, लेकिन नव्यांशी के आने पर सच में उसका काम काफी कम हो गया था। इस बीच अरमान के पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई। मिस्टर राजावत, आपके कहने पर मैंने रोहन की रिकवरी का बोलकर कोर्ट से थोड़ा टाइम लिया था, लेकिन अब 1.5 महीने बीत चुके हैं। आपको उसे हियरिंग के लिए कोर्ट लाना ही पड़ेगा, और परसों कोर्ट हियरिंग है। आई होप तब तक आप बच्चे को मेंटली तैयार कर देंगे, क्योंकि उसका सामना खुद अंकुश राजावत और उसके लॉयर के सवालों से होने वाला है। अरमान ने लॉयर की बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। अब तक वेद ने रोहन की रिकवरी के नाम पर कोर्ट से काफ़ी टाइम ले लिया था, लेकिन अब रोहन को फर्स्ट हियरिंग के लिए कोर्ट ले जाना ज़रूरी हो गया था। आज नहीं तो कल उसे अंकुश राजावत का फिर से सामना करना ही था, फिर चाहे ये उसके लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।